ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र और महाशक्ति बनाने के लिए देश और राज्यों में राजनीतिक स्थिरता जरूरी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित कई आधुनिक तकनीकों को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया तथा सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ रूपये के क्लासरूम निर्माण घोटाले में मामला दर्ज किया। दिल्ली यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान चला रही है। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण पर साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त किया और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र और दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए देश और राज्यों में राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। शिक्षा मंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू में आज एक राष्ट्र एक चुनाव दौड़ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।
भारत के नौजवानों को और हिमालय की चोटी तक पहुंचना है तो देश में और राज्यों में एक राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। बार बार चुनाव, उसके लिए समय के अपव्यय, उसके लिए राजस्व की हानि और उसके लिए सारे दांव पेच और देश की चित्त मानस में विचलित होना, ये देश की प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। ये रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन ये दौड़ नहीं है। ये 2047 तक भारत को दुनिया में सबसे मजबूत देश बनाने के लिए दौड़े।
वहीं इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में आज वह एक राष्ट्र एक चुनाव दौड़ के लिए एकत्रित हुए हैं, जो उनके लिए देश के प्रति एक जिम्मेदारी है।
देश प्रगति की राह पे बड़े 2047 हम सब के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है। जब विकसित भारत और विश्वगुरु भारत की बात हम करते हैं तो उसके लिए एकमात्र रास्ता है वन नेशन वन इलेक्शन।
इस कार्यक्रम में डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम एक अच्छी शुरुआत है जो देश को आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। डॉ. मजुमदार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को सशक्त बनाती है, संस्थाओं का आधुनिकीकरण करती है और भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य देश के विद्यार्थियों को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करना है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी, शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव सुनील कुमार बरनवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी नई दिल्ली और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित कई आधुनिक तकनीकों को लेकर आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
इस समझौते का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से जल संसाधन का प्रबंधन करना है। इस समझौता ज्ञापन के तहत CWC और IIT द्वारा कई क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। इन क्षेत्रों में जल संसाधन प्रबंधन के लिए हाइड्रो सूचना विज्ञान उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग, नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बाढ़ प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रवाह व्यवस्था का आकलन, जल गुणवत्ता विश्लेषण और सिंचाई प्रबंधन शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया तथा सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम निर्माण घोटाले में मामला दर्ज किया है। ये घोटाला आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान 12,000 से अधिक क्लासरूम और इमारतों के निर्माण से जुड़ा है। भ्रष्टाचार रोधी शाखा के प्रमुख मधुर वर्मा ने कहा कि निर्माण के लिए 34 कंपनियों को ठेके दिए गए हैं और उनमें से अधिकांश आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। आरोप है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होने से लागत में काफी वृद्धि हुई। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा इस बारे में शिकायत करने के बाद जांच शुरू हुई। शिकायत में कहा गया है कि क्लासरूम निर्माण की लागत में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी हुई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा केजरीवाल सरकार के मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज करने के कदम का स्वागत किया है। श्री सचदेवा ने कहा कि आज का दिन आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली के लोगों की लड़ाई में निर्णायक दिन है।
आज जब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने शिक्षा एवं शिक्षा सुधार के नाम पर क्लासरूम के निर्माण में घोटाला करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और जेल में मसाज कराने वाले मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की है। हमारी एक मांग ये भी है कि मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के साथ साथ एंटी करप्शन ब्रांच अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच करें।
राजधानी में नागरिकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजधानी के कई निजी स्कूलों में सड़क जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
इन कार्यक्रमों में लगभग 1200 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़ी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को यातायात के नियमों, सड़क सुरक्षा और अनुशासन के साथ साथ वाहन चलाने से संबंधित जानकारी प्रदान करना था। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण CBI ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। CBI ने अमेरिका से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऑपरेशन हॉक के अंतर्गत ये कार्रवाई की। CBI के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन प्रभाग ने भारतीय कानून के अंतर्गत दिल्ली और मैंगलोर के 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान CBI ने पाया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड के जरिए अमरीका नाबालिग लड़कियों के साथ यौन चैट कर रहे थे। अभिकरण ने कहा कि आरोपियों ने नाबालिग पीड़िता को उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो साझा करने और उसे इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी। CBI की टीम ने आरोपियों से जुड़े दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर गहन तलाशी ली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। अभिकरण ने कहा कि उनकी टीम ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खतरे से निपटने और वैश्विक स्तर पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। संशोधित दरें आज सुबह से लागू हो गई हैं। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार खरीद लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया था। पिछले कुछ महीनों में खरीद लागत में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने कहा कि गर्मी जल्दी शुरू होने वाली है और लू की स्थितियां बन जाने के कारण खरीद लागत बढ़ गई है। दिल्ली के पर्यावरण और वन्य जीव मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में पुनर्विकास के लिए आज करीब 2 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सार्वजनिक शौचालय का नवीनीकरण, नालियों का पुनर्निर्माण और पार्कों का कायाकल्प करना शामिल है। एक रिपोर्ट।
इन परियोजनाओं के अंतर्गत रघुवीर नगर और श्याम नगर में ड्रेनेज सिस्टम में सुधार और चौखंडी इलाके में पार्क का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्थानीय निवासियों के लिए स्वच्छता और जल निकासी समेत अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को और बेहतर बनाना है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए श्री सिरसा ने कहा कि पिछली सरकार ने राजौरी गार्डन समेत पूरी दिल्ली में अव्यवस्था फैलाने का काम किया था, जबकि वर्तमान की दिल्ली सरकार शहर में लगे कूड़े के ढेरों को बारी से साफ करने का काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान के साथ अनुपम मिश्र, दिल्ली।
हज यात्रा 2025 के लिए दिल्ली के हज आजमीनों का पहला जत्था अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से रवाना होगा। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने बताया कि दिल्ली से पहले जत्थे में आज करीब 400 हज यात्री मक्का के लिए रवाना होंगे।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने जो है लगातार हज सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जो हमारे आजमीन हज है उनकी यात्रा आसान हो, सुगम हो, अच्छी हो।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को राजधानी के वजीराबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 200 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ जब्त की गई। मादक पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल होने वाला एक दुपहिया वाहन भी पुलिस ने जब्त किया है। दिल्ली नगर निगम के पार्कों की बेहतर देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज महापौर राजा इकबाल सिंह ने उप महापौर और वरिष्ठ पार्षदों के साथ एक बैठक की। बैठक में निगम के विभिन्न पार्कों से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। महापौर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में प्रमुख रूप से टूटी हुई चारदीवारी, जर्जर पगडंडिया, अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सूखे पत्तों का ढेर, माली की कमी, वन विभाग से छटाई की अनुमति में देरी तथा पानी के पंपों की खराब स्थिति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC अपने क्षेत्र के निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए आगामी शनिवार को शहर के जयसिंह रोड स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन करेगा। NDMC ने बताया कि शिविर में निवासी सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। NDMC ने बताया कि सुविधा शिविर में विद्युत विभाग से संबंधित सेवा और शिकायतें, संपत्ति कर, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, NDMC के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा मामले, जल भराव, सड़क मरम्मत, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, बारात घर और पार्कों की बुकिंग जैसी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाएगा। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज देशभर में लगभग 12,000 करोड़ के सोने के आभूषण की बिक्री हुई है। वहीं चांदी के आभूषणों का भी लगभग 4,000 करोड़ का व्यापार हुआ है। ये जानकारी व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ERO और बूथ स्तर अधिकारियों BLO के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और BLO भाग ले रहे हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्वाचन आयोग की आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। कुल 369 चुनाव अधिकारियों ने इस मिश्रित बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय मध्यस्थता संघ का सम्मेलन 3 मई को नई दिल्ली में होगा। इसका आयोजन भारतीय अटॉर्नी जनरल कार्यालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय कर रहे हैं। नई दिल्ली में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मध्यस्थता संस्थान एक साथ आ सकेंगे और मध्यस्थता प्रक्रिया से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों पर चर्चा कर सकेंगे। राजधानी में आज दिन में चिलचिलाती धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें लोगों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम सामान्य रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र और महाशक्ति बनाने के लिए देश और राज्यों में राजनीतिक स्थिरता जरूरी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित कई आधुनिक तकनीकों को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया तथा सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम निर्माण घोटाले में मामला दर्ज किया। दिल्ली यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान चला रही है। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण पर साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त किया और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।